Om Shanti. Brata Dr. Satish Guptari, MD Global Hospital and Research Center ne 1995 se cardiology aur medicine ke senior consultant hain aur healthy and happy life ke vishay ke upar unhone Education and Research Foundation mein फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट थीसिस के वो गाइड भी हैं कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के और इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी इंडियन एकेडमी ऑफ इको कार्डियोलॉजी इंटरनेशनल मेडिकल साइंसेस एकेडमी एसोसिएशन फॉर फिजिशियंस ऑफ इंडिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस सभी के लाइफ मेंबर भी हैं और लाइफ अचीवमेंट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के इस एक्सलेंसी के लिए प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से उन्होंने 2006 से अवार्ड भी लिया है और 2005 में इंटरनेशनल अवार्ड फॉर मेडिकल फॉर द एक्सलेंसी इन मेडिसिन फॉर 21st सेंचुरी वो अवार्ड भी उन्होंने यूएनए के थ्रू प्राप्त किया है और 2000 में उनको 2000 मिलेनियम मेडल का हॉनर भी किया है यूएसए थ्रू और 20th सेंचुरी के आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी अवार्ड से भी उनको नवाजा गया है और 2001 में इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑफ द ईयर फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उनके द्वारा भी उनका अवार्ड से सम्मानित किया है तो वर्तमान समय वो ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सीनियर कंसल्टेंट हैं और कैड रिग्रेशन प्रोजेक्ट उसमें 1998 से वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और कोऑर्डिनेटर रहे हैं एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर के वो फैकल्टी मेंबर भी हैं और बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने सबमिट किए हैं और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर भी उन्होंने सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और 1986 से वो इस राज्यों के अभ्यास कर रहे हैं तो हम सब कलकल धनी से बाई जी का स्वागत करेंगे स्वागत है
ओम शांति आज का विषय है वर्तमान समय का पुरुषार्थ हम पिछली दो बार से 12 अक्टूबर और 5 नवंबर को हमने बाबा से मिलन मनाया और समय को देखते हुए आप सभी जान सकते हैं कि बाबा कैसे अब बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे इस समय बाबा की जो शुभ भावना हम बच्चों के प्रति है जो आश हम बच्चों के प्रति है वो हमारा पुरुषार्थ इस समय कैसा हो समय क्या कह रहा है बाबा क्या कह रहा है और हम बच्चों को क्या करना है तो सरल शब्दों में साथ साथ ज्ञान की गुह्यता में जाके हम प्रैक्टिकल कार्य करते हुए अपने ऑफिस में घर में जो भी हम कार्य करते हैं या सेंटर में जो भी कार्य करते हुए हमारी स्थिति ऐसी रहे कि जैसा कि बाबा चाहता है आज उसी बात पर हम चिंतन करेंगे इसे शुरू करें इससे पहले फिर 2 मिनट हम लोग साइलेंस में अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कर लें सीधे होकर बैठ जाएं हो सके तो अगले 1 घंटे के लिए अपना मोबाइल ऑफ कर दें ताकि एकदम मन और बुद्धि एकदम फोकस करके ताकि अगले आने वाले साल में हमें क्या पुरुषार्थ करना है किस बात पर हमें विशेष अटेंशन रखना है वो हम इस बात पर रूहियान बाबा की मूल्यों के आधार पे करें चलिए 2 मिनट सभी मन बुद्धि को एकाग्र कर ले मैं एक चमकती सितारा आत्मा यहाँ पर चमक रहा हूँ और उससे 7 गुण या 7 एनर्जी मेरी बॉडी में जा रहे हैं शिव बाबा परमधाम में सातों गुणों का सागर, उससे वो शक्तियां मुझ में आ रही हैं और मुझसे होती सारे शरीर में, रोम रोम में जा रही है। इसी अनुभूति में आप बैठ जाएं। वर्तमान समय का पुरुषार्थ हम बच्चों का क्या हो, जैसे कि इस बार हमने बाबा से सुना कि बाबा जगे हुए दीपकों की सभा में आए हैं, तो आपने इसमें गहराई से जब अगर इस पे मनन चिंतन करें तो जगे हुए दीपक का अर्थ क्या है और बुझे हुए दीपक का अर्थ क्या है। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही उसमें, मैं जब पढ़ रहा था मुरली, मैंने कई बार मुरली पढ़ी, तो बाबा ने कहा आप बच्चे संबुद्धि द्वारा समझ सकते हो कि ज्वाला क्या है, रोशनी क्या है और स्वरूप क्या है। ज्वाला या ज्योति क्या है, जगे हुए दीपक की ज्वाला या ज्योति क्या चीज है, तो इसकी गहराई में जाएं तो आत्मा रूपी दीपक, उसकी ज्वाला क्या है, ज्योति क्या है। ये सात गुण जो आत्मा के हैं, सात एनर्जी जो आत्मा की हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, यही आत्मा की ज्वाला है या ज्योति है। तो ये जो आत्मा की जो ज्वाला है, ज्ञान रूपी ज्वाला या ज्योति, पवित्रता रूपी ज्वाला, शांति रूपी ज्वाला, रूहानी प्रेम रूपी ज्वाला, अतीन्द्रिय सुख रूपी ज्वाला, आनंद रूपी ज्वाला और शक्तियों रूपी ज्वाला, जो बुझ गई थी, जो लगभग ना के बराबर हो गई थी आत्मा में, वो वापस जग गई है। तो बाबा उसको देख रहे हैं और उस ज्वाला से जो आसपास जो रोशनी हो रही है, प्रकाश हो रहा है, बाबा उसको देख रहे हैं, जो चेहरे पे दिखाई दे रहा है, और उससे जो स्वरूप बना है, जो लाइट का ऑरा आसपास आ गया है, बाबा उसको देख रहे थे। और बुझे हुए दीपक का मतलब क्या है, ये सातों गुण लगभग ना के बराबर हो गए। अब ये ज्योति सदा जगी रहे, बाबा कौन है? बाबा कौन है? बाबा की भी ज्वाला है ना, बाबा की भी ज्योति है। तो बाबा तो सागर है ना, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम सुख आनंद शक्तियों का सागर है। तो बाबा की ज्वाला रोशनी कितनी होगी, ज्योति कितनी होगी? तो वो है दीपराज और हम है दीपक। अब हम अपने सामने देखें कि वर्तमान समय क्या स्थिति है। जब बाबा पहले आते थे मुरली चलाने के लिए, तो बाबा पहले मुरली में डिफरेंट पॉइंट्स होते थे, शुरुआत से लेकर आखिर तक। और अभी बाबा क्या करने आते हैं? क्या करने आते हैं? बच्चों से मिलन मनाने आते हैं और बच्चों को प्यार करने आते हैं, बस। नहीं ऐसा लगता आपको? मुरली में सिर्फ क्या होता है? प्यार ही प्यार बेशुमार, ताकि बच्चे प्यार से आगे बढ़े। कोर्स तो पूरा हो गया है। बाबा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं? क्योंकि जो आने वाला समय है, लास्ट मुरली में बाबा ने कहा था दिलाराम और दिल, सभी बच्चे बाप के दिल में समाये हैं और बाप के बच्चों के दिल में कौन समाया है? दिलाराम समाया है। तो आज हम इस बात पे भी गहराई से चर्चा करेंगे, दिल में कैसे बाबा समा सकता है और हम बाबा के दिल में कैसे समा सकते हैं। यही जो बाबा की इस समय की वर्तमान समय बाबा हमसे चाहता है कि हम बाबा के दिल में समा जाएं और बाबा हमारे दिल में समाया रहे सदा। तो बाबा कब हमारे दिल में समाएगा और बाबा के दिल में हम कब समाएंगे, तो वो भी इस पर भी आज चर्चा करेंगे। और आज का समय कैसा है, कैसी परिस्थितियां हैं जिसमें हमें पुरुषार्थ करना, वो भी हमारे सामने रहे। आज बाबा ने एक मुरली में बड़ा अच्छा बताया था, अव्यक्त मुरली थी बाबा की। तो बाबा ने कहा वो समय आ गया है, यानी उस समय कहा था आने वाला है, किंतु वो समय सामने दिखाई दे रहा है कि चार प्रकार की आग अंतिम समय में लगेगी और वो चारों तरफ होगी। और बाबा के बच्चे ये जो ज्वाला आत्मा की ज्योति या ज्वाला जो अपने अंदर इकट्ठी कर लेंगे और उसके उसकी प्रकाश से चमकते रहेंगे और ऐसा स्वरूप बना के रखेंगे, उसके स्मृति स्वरूप रहेंगे, तो ऐसे बच्चे इस ज्वाला से बच पाएंगे। जो चार प्रकार की आग लगेगी उससे बचे रहेंगे और साथ साथ दूसरी आत्माओं को भी इसमें शीतलता प्रदान करेंगे। तो पहली जो आग हम देख रहे हैं आज दुनिया में, पहली है विकारों की आग। आज आप देखते हैं, पहले तो विकार, कुछ समय पहले, आज से 10-15 साल पहले लगभग, विकार के रूप में विकार थे, किंतु हर जगह मौजूद नहीं था उसका। हर आत्मा में तो, हर मनुष्य में तो विकार थे, किंतु उसका इतना वृद्ध रूप नहीं दिखाई दे रहा था। बच्चे फिर भी बच जाते थे उस बात से, किंतु आज कैसा है, मोबाइल, टेलीविजन और इंटरनेट, इसके द्वारा क्या हुआ है, घर घर में, क्या छोड़ो एक एक अरे की जेब में मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है और टेलीविजन भी है। अब बच्चों को इतना, ये जो पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने भी सीरियल्स आते हैं, जितने भी फिल्में बनती हैं, इंटरनेट पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एक बटन दबाने पर, जिससे कि बच्चों का दिमाग दूषित हो चुका है, बड़ों का दिमाग भी दूषित हो चुका है, और पांचों विकार एकदम इसमें तमो प्रधानता के रूप में, एकदम तमो प्रधान, जो आप अखबार में टेलीविजन में देखते हैं, एकदम तमो प्रधान रूप में आ गए, जगह जगह व्याप्त हो गए बुरी तरह से। लोभ भी इतनी बुरी तरह से व्याप्त हो चुका है ना, मोह भी कितने बुरी तरह से व्याप्त हो चुका है। तो ये जो है, और इसके कारण आज के बच्चों में और बड़ों में डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, नींद का ना आना, स्किजोफ्रेनिया, ये बहुत सारे रोग आज फैलते जा रहे हैं। ऐसा देखें, यानी मैं हर चौथे व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया है लगभग। एंजाइटी तो सबको ही है लगभग, चिंता क्या होगा कैसे होगा। तो आज ये समस्या आप योग में है, किंतु आपके घर में जो रहने वाले हैं वो बच्चे, युगल, आपके माता पिता, सास ससुर, उनको भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आपका अटेंशन वो खींचते हैं, और हमारे आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी ये चीजें अभी तक खत्म नहीं हुई, अंश अभी भी है। तो इसको मैं जानते हुए कि विकारों की आग बहुत तेज हो गई है अभी। दूसरी बात, देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की आग, देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की आग। हर आदमी अपनी देह से इतना अटैच हो गया है और देह के रोग इतने बढ़ गए हैं। आज अगर हम देखें तो 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। आप भी जितने बैठे हैं, आप में से शायद ही कोई हुआ जिसको जो कहे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी, हर चौथे व्यक्ति को एसिडिटी की बीमारी है, हड्डियों की बीमारियां, सांस की बीमारी, एक्जिमा, एस्थमा, मतलब इतनी बीमारियां हैं अभी। हर व्यक्ति को दो दो बीमारी तो है ही, किसी को 5-6-7-8 भी है। और मन की बीमारियां हर एक को 5-6 हर एक को है। चिंता करना सबसे बड़ी बीमारी है, गुस्सा करना सबसे बड़ी बीमारी है, उदासी मैंने आपको बताई 20-25% लोगों को हो गई है, नींद का ना आना, ये सब हर एक को है। ईर्ष्या द्वेष सबके अंदर आ गई है, ईगो सबके अंदर है, ये सब मन की बीमारियां हैं। तो आज देह में इतने फंसे हुए हैं, जरा सा देखो कुछ हो जाए, कोई अंग में बीमारी आ जाए तो उसी में खोए रहते हैं। देह के संबंध इतना गहरा हो गया है, संबंधों में कुछ हो जाता है, माता पिता को, भाई बहन को, पति पत्नी, बच्चे को कुछ हो जाता है, सारा टाइम उसी में लगे रहना पड़ता है। और बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट हो गया है, बहुत महंगा हो गया है, और कोई ऐसा इलाज नहीं जो सचमुच इलाज कर दे। चाहे एलोपैथी करो, चाहे होम्योपैथी करो, चाहे आयुर्वेदिक करो, चाहे नेचुरोपैथी करो, कोई भी बीमारी का इलाज नहीं कर पाते, सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज है। तो ये खींचने वाली बात है ना, ये भी एक आग का रूप ले चुकी है, देह और देह के पदार्थ। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, है ना। थोड़ा सा कुछ कम हो जाता है, कुछ भी, कपड़े भी थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ कम मिलता है, थोड़ा सा कुछ भी चीज में कमी हो जाती है, तो बुद्धि उसी में लगी रहती है। तो ये देह और ये दूसरी आग। तीसरी जो आग है वो विनाश की आग है। जो विनाश की आग है वो भी तेज तेज होती जा रही है। अभी देखो श्रीलंका, अभी जो हुआ ना श्रीनगर में, जो कभी नहीं हुआ, पूरा श्रीनगर पानी से भर गया, 30-30 फुट पानी आ गया, खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ भी नहीं, 4-5 दिन तो किसी कुछ मिला ही नहीं, कितने लोग तो मर गए। तो एकदम जैसे हर जगह हर रूप में देखो तो विनाश, अभी तो एक एक तत्व है किंतु 5 तत्व भी धीरे धीरे, साइक्लोन कभी आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, ये भी तेज होती जा रही है। और चौथी जो आग है वो है पश्चाताप की आग। ब्राह्मणों में अब देखने में आ रही है, जो हम ज्ञान में आए 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल, किसी ने अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया, बाबा की श्रीमत पे नहीं चले हैं, तो अब उनके अंदर पश्चाताप की आग आ रही है कि हमें इतने साल हो गए चलते चलते, किंतु अभी भी हमारा योग अच्छा नहीं लगता है, अभी भी हमारी स्थिति अच्छी नहीं होती है, अभी भी अब जैसे बाबा कहते हैं 1 सेकंड में हम नष्ट मुआस में तिलब्धा हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं है, आज भी हम इसी छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, वैसे संकल्प आ जाते हैं, विघ्न आ जाते हैं। तो चार प्रकार की आग, कौन कौन सी आग? विकारों की आग, दूसरी देह देह के संबंध देह के पदार्थ के लगाव की आग, चौथी तीसरी विनाश की आग, और चौथी पश्चाताप की आग। बाबा ने उस मुरली में बड़ा अच्छा बताया था कि चारों प्रकार की आग से बचने का साधन क्या है। विकारों की जो आग है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने अनादि और आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप में मैं क्या हूं, संपूर्ण सत्व प्रधान आत्मा हूं परंधाम में, और आदि स्वरूप में मैं क्या हूं, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, वो भी पावन सदो प्रधान स्वरूप है। उसको जितना बार हम स्मृति में इमर्ज करते जाए, बार बार स्मृति में लाते जाए, उतना ये जो है जो विकारों की आग खत्म होती जाएगी। मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप था वो क्या था? पावन तत्व प्रधान था। मैं हूं ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। ये तो द्वापर में आकर जैसे कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो कपड़े गंदा हो गया तो ओरिजिनली तो कपड़ा साफ था ना, गंदा हो गया तो धोने के बाद फिर साफ हो जाएगा। तो वो मेरा, ये मेरा गंदा कपड़ा मेरा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वो एकदम पावन तत्व प्रधान था। तो बार बार उसको इमर्ज करने से, बुद्धि में इमर्ज करते जाओ, तो जितना बार उसको इमर्ज करते जाएंगे, धीरे धीरे वो एक्शन जैसी स्मृति वैसी समर्थ होती जाती। फिर देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों की आग में क्या सब बाबा ने बताया कि बच्चे जितना बाप को अपना संसार बनाते जाओ, दे नहीं, दे बाबा को दे दो, दे के संबंध बाबा को दे दो, दे के पदार्थ बाबा को दे दो, बाबा ही मेरा संसार है। बाबा के साथ खाना, बाबा के साथ सोना, बाबा के साथ उठना, बाबा के साथ हर कर्म करते बाबा को साथ ही बनाकर रखना, बाप का हाथ और साथ मेरे साथ, बाबा का हाथ मेरे सिर पे है, श्रीमत रूपी हाथ, और बाबा मेरे साथ है, दिल में मेरे साथ है। अभी जिससे थोड़ा सा हम गहराई में जाएंगे कि दिल क्या है, बाबा ने कहा ना आज का वरदान भी था, कल का वरदान भी था, मन बुद्धि को श्रेष्ठ आसन पर बिठाना है। तो कैसे हम उस आसन पर बिठा के गहराई से, ज्ञान की गहराई में जाकर के जो बाबा कहते हैं उस पर हम चल पाए, क्योंकि ज्ञान की गहराई के बगैर योग नहीं लगेगा, और योग की गहराई के बगैर धारणा नहीं होगी, और धारणा के बगैर सेवा नहीं होगी, और सेवा नहीं होगी तो खुशी नहीं होगी। तो ये चार सब्जेक्ट जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो बाबा चाहता है इसमें मेरे सभी बच्चे पासवेद ऑनर हो जाएं, वो उस पर हम गहराई से चलेंगे। और फिर विनाश की आग जो है, विनाश की आग में बाबा कहते हैं कि विनाश की आग से बचने का साधन निर्भयता की शक्ति। निर्भयता, निर्भयता किसको होगी? जिसकी एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम होगा। तो एक आंख में, कौन सी आंख में शांति धाम, कौन सी आंख में सुख धाम, बताइए बहने बताएं, कौन सी आंख में शांति धाम, कौन सी आंख में सुख धाम? राइट में शांति धाम, लेफ्ट में सुख धाम, भाई बताएं कौन सी आंख में शांति धाम, कौन सी आंख में सुख धाम? बाबा किससे बात कर रहे हैं? बाबा किससे बात कर रहे हैं? देर से बात कर रहे हैं क्या? दे की आंख से कह रहे हैं कि इस राइट आंख में शांति धाम, इसमें सुख धाम, कौन सी आंख से बात कर रहे हैं? बाबा आत्मा से बात कर रहे हैं, आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा के पास कौन सी आंख है, कौन सी आंख है? बाबा के पास भी, आत्मा के पास भी दो आंखें हैं, कौन कौन सी? मन और बुद्धि, है ना? बुद्धि में शांति धाम और मन में सुख धाम। बुद्धि रूपी आंख में क्या क्या होगा? जिसके शांति धाम समाया होगा वो निर्भयता। जैसे एक बुद्धि में क्या है, उसके बुद्धि में दुख धाम है ही नहीं, बुद्धि में दुख धाम है ही नहीं, बुद्धि में शांति धाम समाया हुआ है। तो जहां पे बारी बुद्धि होती वहां पर कितनी देर में पहुंच जाते हैं हम? राधा, जहां हमारी बुद्धि होती है वहां ही हम रहते भी हैं, नहीं रहते हैं? जहां हमारी बुद्धि होती है वहीं पर हम रहते हैं ना। तो मैं कहां रहता हूं? अगर मेरी बुद्धि में शांति धाम है तो मैं कहां रहता हूं? शांति धाम में रहता हूं। एक सेकंड में संकल्प किया और पहुंच गए। तो बुद्धि रूपी आंख में शांति धाम और मन रूपी आंख में सुख धाम, उसको विनाश की आग जला नहीं सकती है। उसको विनाश की आग से डरने लगेगा, इस दुनिया में रहते रहते विनाश की आग से डरने लगेगा। मकान जल रहा होगा, टूट गए होंगे सब, सब चारों तरफ मर रहे होंगे, पांचों तत्व अपने संपूर्ण स्थिति में होंगे, संपूर्ण मतलब संपूर्ण विनाश की स्थिति में होंगे, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, धरती पे से बोल शिफ्ट हो जाएंगे, पानी बह रहा होगा, आग लगी होगी चारों तरफ से, तूफान आ रहे होंगे, साइक्लोन सुनामी आ रही होगी, लाशें बह रही होंगी, किंतु वो स्थिति में भी, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, कैसे उस स्थिति में भी हमारी जो स्थिति अंदर की स्थिति है, ये प्रकृति के पांचों तत्व भी हमारी सेवा करेंगे। जैसे आज का वरदान था माया जीत प्रकृति जीत, वो हमको अभी बनना है। और फिर जो है जो चौथी बात है, कौन सी? पश्चाताप की आग। तो पश्चाताप की आग जब होगी, पश्चाताप की आग से क्या बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी समय रहते हमको बाबा से सर्व प्राप्तियां कर लेनी, एक एक संबंध का सुख, एक एक प्राप्ति का सुख बाबा से अभी लेना। तो चारों प्रकार की, वर्तमान समय वो समय आ गया है, बाबा इशारा दे रहा है कि बच्चे वो समय आके पहुंचा है, पढ़ाई का कोर्स पूरा हो गया है, अब सिर्फ मैं तुम बच्चों को ऊपर से पॉलिश करने आता हूं, अभी मुरली सुनाने नहीं आते हैं बाबा, सिर्फ पॉलिश करने आते हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं बच्चे। बाबा ने, मुझे याद है आज से 11 साल पहले बाबा ने कहा था, बच्चे बाबा बच्चों के साथ सच्ची दिवाली मनाना चाहते हैं, अगले साल सच्ची दिवाली मनाओ। क्योंकि इस बार बाबा ने कहा बाबा सच्ची दिवाली मना रहे हैं जगह दीपकों के साथ। और अब आपका वो समय आ गया है जब जो भक्त हैं दुनिया में, जो भक्त हैं, सभी भक्त हैं, आपका देव स्वरूप देख रहे हैं, भले आप साधारण बैठे हो। और अब अभी कुछ कुछ आत्माएं हैं जिनके द्वारा उनके उनके वाइब्रेशंस फरिश्ता स्वरूप उनका प्रख्यात हो रहा है, स्पेशली दादियों का, उनको फरिश्ते के रूप में लोग देखते हैं जगह जगह दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में, भक्त देखते हैं उनको। किंतु धीरे धीरे सभी का हो जाएगा, ये बाबा ने लास्ट की लाइन में ये बताया, आप सभी का ऐसा स्वरूप हो जाएगा आने वाले समय में। तो बाबा ने रिजल्ट भी सुना दिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं मन और बुद्धि। बाबा ने कहा निर्भयता की शक्ति, तो मन और बुद्धि में कैसे हम बसाएं, दिलाराम को अपने दिल में कैसे बसाएं? दिल क्या है, बुद्धि क्या है, मन क्या है, थोड़ा सी गहराई में चलते हैं, ज्ञान की गहराई में चलते हैं, और फिर इसको कैसे हम जीवन में अपना लें, हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे हमारा ये पुरुषार्थ नेचुरल बन जाए, हमारे स्वभाव संस्कार में आ जाए। जैसे विकार हमारे स्वभाव संस्कार में आ गए हैं, हमें गुस्सा करना नहीं पड़ता है, करना पड़ता है क्या? कोई सामने वाला गुस्सा करे, हमें गुस्सा करना पड़ता है क्या? क्या होता है? ऑटोमेटिक आ जाता है ना, नहीं आ जाता है? कोई चीज में मोह पैदा करना पड़ता है क्या? जिनसे मोह है उससे मोह ऑटोमेटिक लगा हुआ है ना, नहीं लगा होता? हटाना पड़ता है बुद्धि को वहां से ना, नहीं? तो लोभ हमें करना पड़ता है क्या? लोभ ऑटोमेटिक आ जाता है ना, नहीं आ जाता है? तो वो जो चीज जैसे नेचुरल बन गई ना, जो विकार नेचुरल बन गए थे, अब हम शिव बाबा की याद से उसको हटा रहे हैं। कैसे शिव बाबा की याद से हटते हैं, कैसे हमारे विकर्म विनाश हो जाए और कर्मातीत बन के हम फरिश्ता बन जाए? सबसे पहले तो हम ये बात समझें कि शिव बाबा जब ब्रह्म के तन में आते हैं तो सबसे पहले आके हमें मनुष्य से देव ब्राह्मण बनाते हैं। मनुष्य का मतलब ही क्या है? मनुष्य माना मन के वश में, मनुष्य माना मन के वश में, मनुष्य मन प्लस उष्य माना मन के वश में। द्वापर से हम मनुष्य बने हैं। द्वापर के पहले हम क्या थे? देवी देवता थे। तो मनुष्य हम बने और अब मनुष्य से हमें ब्राह्मण बनना है। मनुष्य माना जिसकी मन और बुद्धि हद में लगी हो। हद क्या है? देह, देह हद है, देह के संबंध भी हद में है, देह के पदार्थ भी हद के हैं, और देह के स्वभाव संस्कार, चार बातें हैं, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव, चार बातें ना। तो मनुष्य की बुद्धि हमेशा अपनी देह में लगी रहती है, देह के संबंधों में लगी रहती है। देह का स्वभाव क्या है? देह का स्वभाव ये पांच विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये देह को देखते ही, अपनी देह को देखें या दूसरे की देह को देखें, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाते हैं। क्योंकि देह क्या है? हमारी अनस्टेबल है, आज कैसी है कल कैसी है, एक जैसी नहीं है, विनाशी है ना। देह के संबंध भी विनाशी है, देह के पदार्थ भी विनाशी है। तो इसके कारण अनस्टेबल होने के कारण से हमारी इस अनस्टेबिलिटी से इनसिक्योरिटी पैदा होती है, डर पैदा होता है। उस डर की वजह से पांचों विकार पैदा होते हैं। कहां विकार पैदा होता है कि मेरे पास कोई तो अपना हो जो मेरे साथ हो, जो मेरा हो, जिसको मैं मेरा मेरी कह सकूं। क्रोध पैदा होता है, मेरी कोई चीज को छू ले या मेरी कोई चीज कुछ देखे, क्रोध पैदा होता है। लोभ, उसके लिए चीजें इकट्ठी कर लें जो मेरा है या मेरी है, है ना। और मोह, जो उसके द्वारा संतान उत्पत्ति होती है, जो उसके अंदर उसके उसके प्रति मोह पैदा होता है। और अहंकार, जो हम इकट्ठा कर लेते हैं उसका अहंकार हो जाता है। नाम मान शान जो इकट्ठी हो जाती है। तो ये हमारा स्वभाव, ये देह आत्मा का स्वभाव नहीं, देह का स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव ठंडक है और आग का स्वभाव गर्मी है, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां हैं। और देह का स्वभाव ये पांच विकार। और देह का संस्कार क्या है, देह की आदत क्या है? देह की आदत आलस्य है। जैसे ही अपने को देह समझोगे आलस आएगा। थोड़ा सा और सो लेते हैं। कल रात को देर सोए थे ना, अभी चार बजे नहीं उठते, 4:30 उठेंगे, आधा घंटा और सो लेते हैं। 3:30 नहीं उठते, 4 बजे उठेंगे। अच्छा, अभी योग कर ले, थोड़ा आधा घंटा सो जाएंगे, फिर 7 दिन काम करना है। नहीं होता ऐसे, होता है ना। तो ये आलस देखा आदत है, संस्कार बना आदत है, अलबेलापन। चलो अभी थोड़ी देर में मुरली तो फिर घर में ही पढ़ लेंगे, आज सेंटर पे क्या जाना है। नहीं, बाबा का तो सारा संगम ही अमृत वेला है। तो बाबा की मुरलियों में से एक वीक पॉइंट निकाल कर, वो ऐसा पॉइंट निकालेंगे अपने मतलब का, और उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके उसको यूज करेंगे। तो ये जो है अलबेलापन, ये देह का नेचर है, देह का संस्कार आदत है, हैबिट है। दूसरों में दोष निकालना देह की आदत है। बदला लेने की भावना देह की आदत है। शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, भय डर लगना, ये देह की आदत है। हर बात में जल्दीबाजी करना और ईर्ष्या करना, ये देह की आदत है। अब मैं ऐसा, ये ऐसी, ये ऐसा, ईर्ष्या, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये देह की आदत है। तो ये देह के स्वभाव संस्कार, ये चारों चीजें जो है ये मनुष्य इसके वश में रहता है। और जब शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आते हैं, बाप दादा आकर के, हम बच्चों को पहले मनुष्य से ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण शब्द का मतलब ही क्या है? ब्राह्मण, ब्रह्मा का मतलब क्या है? ब्राह्मणा बेहद, मां, बेहद की मां, बेहद मनुष्यों की मां, बेहद सभी मनुष्य आत्माओं की मां, ब्रह्मा बाबा, राइट। तो ब्राह्मण क्या हुआ? ब्राह्मण अर्थात जिनका मन और बुद्धि बेहद में रहे। जिनका मन और बुद्धि कहां हो? बेहद में हो। जिनका मन और बुद्धि बहुत बड़ा हो, विशाल हो। तो अगर हम ब्राह्मण शब्द के अर्थ में टिक जाए तो क्या होगा? अर्थात जिसकी आत्मा क्या है? बेहद है। बाबा क्या है? बेहद है। हमारे बाबा से संबंध कितने हैं? बेहद है। हर संबंध बाबा के साथ हम निभा सकते हैं, नहीं? और ड्रामा क्या है? बेहद है। तो जो एबीसीडी है ना, एबीसीडी, ज्ञान शांत, अगर हम सार रूप में कहें तो ज्ञान का चार बातों में आ जाता है। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। ए फॉर आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु परमात्मा के संतान जो परमधाम में रहते हैं, मुझ आत्मा के सर्व संबंध उनके साथ हैं। वैसे तो सर्व संबंध है कि तो मुख्य 9 संबंध बाबा से अनुभव कर सकते हैं, माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा। ये 9 मुख्य संबंध हम बाबा से अनुभव कर सकते हैं। और एक एक संबंध की अनुभूति बहुत प्यारी है। एक एक संबंध में एक एक घंटा हम योग कर सकते हैं। 9 संबंध की अनुभूति कर, 9 घंटा आप योग कर, हम योग कर सकते हैं। उसमें खो जाए एक एक संबंध में। और डी फॉर ड्रामा, ये संसार रूपी नाटक ड्रामा, इसमें हर आत्मा एक्टर है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है और शिव बाबा इसका डायरेक्टर है। मतलब ये कहूंगा मेरा बाबा इसका डायरेक्टर है और कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। कोई व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, क्यों दुख दे रहा है? वो मेरा मेरे माता पिता हो सकते हैं, मेरी पति पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई और दुख नहीं देता। हमारे आसपास वाले दुख देते हैं, नहीं देते हैं? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने उनको दुख दिया हुआ है, हमने उनको परेशान किया, इसलिए हमें परेशान करते हैं। इसलिए अभी तक जो हुआ अच्छा हुआ, हिसाब किताब चुप हो रहा है, और जो होने वाला जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बाबा साथ में है अभी, और जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। तो जितना हम इस एबीसीडी, ये ज्ञान जो है सार रूप में जो एबीसीडी है, उसको जितना हम इसको बार बार रिवाइज और रियलाइज करते जाते हैं, उससे हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होती जाती है, पवित्रता आती गई ना। नहीं तो हमारी मन बुद्धि में क्या रहता है, इसने ये किया ना मेरे साथ, बहुत बहुत बुरा किया, इसने मेरे को धोखा दिया, इसको मैंने इतना आगे बढ़ाया, इसने मेरे को धोखा दिया, इसने मेरे को बहुत दुख दिया, सारा टाइम बुद्धि में यही लगा रहता है, मन और बुद्धि में यही चलता रहता है, नहीं चलता रहता है? तो यही मन गंदा हो जाता है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है, यही अपवित्रता है। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करती है, इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यही अपवित्रता है। जब जिसने जो किया अच्छा किया, ड्रामा अनुसार किया, बाबा की डायरेक्शन पे किया, मैं डायरेक्टर नहीं, शिव बाबा डायरेक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार किया, तो मन बुद्धि पवित्र हुई कि नहीं हुई? तो जब इस तरह से हम करते हैं तो हमारी मन बुद्धि पवित्र होती है, तो ज्ञान से पवित्रता है। तो ये जब ज्ञान रूपी ज्योति जगती है, जब बुद्धि में ये ज्ञान आ जाता है, तो आत्मा रूपी ज्योति जग जाती है, जो सो गई थी। पहले क्या था, आत्मा बुझ, दीपक क्यों बुझ गया था? क्योंकि आत्मा में अज्ञान आ गया था, मैं डॉक्टर हूं, मैं बहुत अनुभवी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, या हीन भावना, मैं तो बहुत कमजोर हूं, मेरी शक्ल तो अच्छी नहीं है, मेरे को तो क्या कहेंगे लोग, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, या तो मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, नहीं? या तो हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो इसमें या तो बॉडी कॉन्शियस हो गए थे, या रोल कॉन्शियस, या मेटेरियल कॉन्शियस हो गए थे, जिसकी वजह से आत्मा रूपी ज्योति बुझ गई थी। अब ये ज्ञान आने से, तो इस बेहद में ब्राह्मण माना बुद्धि इसमें टिकी रहे, एबीसीडी में टिकी रहे, यह बेहद है। आत्मा भी बेहद है, बाप भी बेहद है, ड्रामा भी बेहद है, और हमारे बाबा संबंध भी बेहद है, निरंतर है, सदा है। तो ये जो है, जिसकी बुद्धि इस बेहद में टिकी रहे, वो है ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण। अगर मेरी बुद्धि जरा भी देह में जाती है, देह के संबंधों में जाती है, देखे स्वभाव संस्कार में जाती है, देखे पदार्थ में, तो मैं उसमें ब्राह्मण नहीं हूं, उसमें मनुष्य हूं, और विकारों में जाती शूद्र हूं। तो वर्तमान समय बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तक जो कुछ हमसे गलतियां हो गई, ब्राह्मण बनने के बाद भी हमने बहुत पाप किए, जाने अनजाने, हिसाब किताब कहो, जो भी हुआ उसके अनुसार हमने बहुत पाप किए, अभी उनको बीती को बीती करके, अभी 5:15 से हम अपने आप दृढ़ संकल्प लें कि अभी से हम अपने आप को बस बाबा का जो ज्ञान है, बाबा की जो मुरली है, उसको हम गहराई से मनन चिंतन मंथन सिमरण करते हुए, मैं इस बात पर थोड़ा समय अभी आऊंगा कि कैसे हम बाबा की मुरलियों को, क्योंकि सारा का सारा ज्ञान मुरलियों में समाया हुआ है, बाबा की मुरली ही श्रीमत है, और कैसे हम मुरली के द्वारा सारा अपना जीवन, वर्तमान जीवन को, वर्तमान पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि बुद्धि जो है तो ब्राह्मण माना जिसकी बेहद में बुद्धि रहे, और ये बुद्धि क्या है, बुद्धि के चार एस्पेक्ट हैं। पहला जो एस्पेक्ट है वो दिल है, जिसे इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं। बाबा ने कहा दिल में दिलाराम, इस दिल में दिलाराम समाएगा क्या? ये तो एक पंप है, हार्ट तो एक पंप है ना, इसमें दिलाराम रह सकता है क्या? इस दिल की बात बाबा नहीं करते हैं, आत्मा रूपी दिल की बात करते हैं, आत्मा के दिल की बात करते हैं। इस दिल में बाबा समाओ, इस दिल में बाबा को समाओ, तो दिल माना कॉन्शियसनेस या कॉन्शियंस या अंतरात्मा, उसे दिल कहते हैं। जिस दिल में देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार या देह के पदार्थ होंगे, जिस कॉन्शियसनेस में मैं देह हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये, या मेरे मैं मेरे को तो गुस्सा करने की आदत है, मैं तो बहुत गुस्से वाला हूं, मैं गुस्से के बगैर रह नहीं सकता हूं, मैं बहुत सेंसिटिव हूं, मेरे को बात बात बहुत डर लगता है, अगर ये फीलिंग है तो ऐसे दिल में बाप नहीं समा सकता है। जिस दिल में ज्ञान भरा हुआ है, ये सात गुण भरे हुए हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां भरी हुई हैं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा हूं, उस दिल में बाप समझता है। ऐसे दिल में दिलाराम आके बैठता है, और ऐसा बच्चा ही बाप के दिल में बैठ सकता है। जिस दिल में देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ जरा भी है, रत्ती भर भी है, तो बाबा ऐसे दिल में नहीं आता, और ऐसा बच्चा बाप के दिल में भी नहीं समा सकता। तो हमें ये अटेंशन रखना है कि बाबा मेरे दिल में, दिलाराम कौन है? अगर दिलाराम शब्द को ही आप देखो, दिल को आराम देने वाला, अर्थात मेरी कॉन्शियसनेस में ज्ञान भरने वाला, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्तियों का सागर भर जाता है, और उससे फिर जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है बुद्धि का, वो है विवेक, परखने की शक्ति, विवेक मना परखने की शक्ति। तो जब दिल में दिलाराम है, ये सातों गुण भरे हैं, तो मेरा विवेक कैसा बन जाता है? ईश्वरीय विवेक बन जाता है, विजडम। एक सेकंड में परख सकते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और उसका नेक्स्ट, बुद्धि का नेक्स्ट एस्पेक्ट है निर्णय करने की शक्ति। एक सेकंड में निर्णय कर सकते हैं राइट निर्णय क्या है, और उसके बाहर चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड, जिसको अंतर्मन भी कहते हैं। तो जब हमारे दिल, जब हमारे दिल में सत्य है, ज्ञान, पवित्रता, शांति है, सत्य है, विवेक मेरा ईश्वरीय है, बुद्धि मेरी दिव्य है, तो मेरा चित्त शांत, एकाग्र और आनंदमय है। अर्थात जो दिल में है वो चित्त में है, तब मेरा जो मन है, मन के भी चार एस्पेक्ट हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, तो फिर जो स्मृतियों में जो रिकॉर्ड होता है, स्मृति में जो रिकॉर्ड होता है वो ये एबीसीडी रिकॉर्ड होता है, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। वृत्ति मेरी सबके प्रति आत्मिक बन जाती है, भावना मेरी शुभ भावना सबके प्रति, संकल्प शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली और कल्याणकारी बन जाते हैं। और बाहर ये फिजिक, यही हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये बुद्धि और मन, यही हमारा सूक्ष्म शरीर है, और ये देह इसके बाहर फिजिकल बॉडी पांच तत्वों की बनी हुई, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी से बनी हुई। और इस तरह से जो, जैसे एक, अगर हम ये जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, जैसे जैसे आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में पांचवें महीने प्रवेश करती है, स्थूल शरीर में, गर्भ में प्रवेश करती है पांचवें महीने में, तो जैसे जैसे वो शरीर बड़ा होता है, आत्मा अपने अंदर वो एनर्जी उसको देती है शरीर को, शरीर बड़ा होता जाता है और सूक्ष्म शरीर भी बढ़ता जाता है। सूक्ष्म शरीर की शेप, फॉर्म, और स्थूल शरीर की शेप सेम होती है। जैसे एक सूखी ब्रेड ले लो आप और प्लेट पे दूध डाल दो और ब्रेड उस पर रख दो, तो क्या होगा? दूध सारा कहां चला जाएगा? ब्रेड के अंदर चला गया ना। अब दूध की शेप क्या हो गई? दूध जैसी हो गई, नहीं हो गई। तो सूक्ष्म शरीर में दिल भी है, फेफड़े भी हैं, दिमाग भी है, सब कुछ, सारे अंग हैं, ऐसे कैसे? तो सूक्ष्म शरीर, इसलिए कहते हैं हमारा मन और बुद्धि, हमारा मन और बुद्धि, यहां पर कुछ हो जाता है, पैर में कुछ होता है, कमर में कुछ होता है, खून सी निकलाती है, तो हमारा मन और बुद्धि वहीं लग जाता है, सारा टाइम उसी के विचार आते रहते हैं, उसी के बारे में चिंता होती रहती है, नहीं होता है? तो ये हमारा मन और बुद्धि इस तरह से हमारी सारी बॉडी पे कनेक्शन रखता है। तो इस तरह से हम अभी अभी हमारी अब यही हमको पुरुषार्थ करना है कि जितना हम बार बार अपनी दिल में, अपनी कॉन्शियसनेस में जितना ज्यादा हम दिलाराम को समा के रखेंगे और ये बार बार रिवाइज करते जाएंगे एबीसीडी को, ज्ञान को। जैसे अब जो बाबा की मुरली है, मुरली जब हम सुनते हैं बाबा की, तो बाबा की मुरली सुनने में हमें क्या करना होता है? जब सुनते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट 6 स्टेप है मुरली सुनने के। मुरली हमारे जीवन में आ जाए इसके लिए 6 कदम है। पहला कदम है सुनना, श्रवण। जब हम बाबा की मुरली क्लास में आके सुनते हैं तो हम ऐसे सुने जैसे कि बाबा की गोद में बैठ के सुन रहे, क्योंकि बाबा का लव लेटर जैसे है, बाबा का हम बच्चों के लिए प्रेम पत्र है। बाबा अपने बच्चों को कितना 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 बोलता है, मीठे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, कितनी कितनी बार बाबा ने, कल परसों की मुरली में कितनी बार बाबा ने बोला है। तो बाबा जो है इसको बहुत, हमारे लिए बहुत एक एक ऐसी बातें कहता है, और ये मुरली जो है 100% हमारे मन को पॉजिटिव बनाती है। जैसे मैंने बताया ना, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, मुरली में 100% पॉजिटिव स्मृतियां हैं। पॉजिटिव वृत्ति माना एटीट्यूड है, भावना है, 100% पॉजिटिव संकल्प है, और यही मन है। मन इन्हीं 4 बातों का बना हुआ है। तो ये जो हम मुरली को सुने तो बाबा की गोद में जैसे बैठ के सुन रहे हैं, आपको याद, आपको पता भी होगा जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे करते हैं रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? एकदम चारों तरफ साइलेंस कर देते हैं, कोई भी आवाज अगर आसपास आ रही होगी तो क्या होगा, वो भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो हम ये अटेंशन रखें, जब भी हम बाबा की मुरली सुनते हैं मन बुद्धि को चारों तरफ से एकदम कोई भी विचार चलाने बंद कर दें, आराम से बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुने। बाबा हमसे कितने दूर है, सूक्ष्म वतन कितने दूर है हमसे, परमधाम कितने दूर है हमसे? जैसे आप बेंगलोर से आए हैं, कोई बेंगलोर से भी आएंगे ना कुछ, तो बेंगलोर यहां से कितने दूर है, कितने दूर है, समझे नहीं हम? हाँ यस, संकल्प किया और पहुंचे ना, मन बुद्धि से तो यहां बैठे बैठे जा सकते हैं ना, 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं ना, चाहे बॉम्बे जाना हो, चाहे बेंगलोर जाना हो, चाहे आपको बेलगाम जाना हो, है ना, 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं ना। तो ऐसे ही जब हम मन बुद्धि से संकल्प, तो यहां से हम जैसे बैठे हैं तो एकदम मन बुद्धि से संकल्प करें कि मैं बाबा की गोद में हूं, 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे। तो सूक्ष्म वतन कितनी दूर है यहां से, 1 सेकंड, 1 सोच की दूरी पर है। बाबा की गोद कितनी दूर है, 1 सोच की दूरी पर है। अपने बेडरूम में हम पहुंच सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में हम पहुंच सकते हैं 1 सेकंड में, तो उससे सोचा और पहुंचे। ऐसे ही बाबा की गोद में पहुंच जाएं और बाबा हमको मुरली सुना रहा है, बाबा बहुत प्यार से, मैं बहुत प्यार भी कर रहा, सुना भी रहा, ऐसे सुनते जाएं। और फिर जब हम मुरली पूरी सुनने के बाद जब हम सैर करते हैं, मैं हमेशा ऐसे करता हूं, मैं अपनी बात आपको बताता हूं, मुरली सुनने के बाद हम 45 मिनट सैर करते हैं, 45 मिनट सैर करते हैं डेली विदाउट फेल। तो मुरली हमारे पास होती है, लिखी हुई होती है, और वो पूरी मुरली भी मेरी जेब में होती है। तो मुरली के एक पॉइंट को निकाल लेते हैं, फिर रिवाइज करते हैं। तो मुरली के बाद 2nd स्टेप है मनन, सुनने के बाद मनन, मनन मतलब रिवाइज करना। ये तो आपने सुनी है, उसको मन मन में रिवाइज करो, नहीं तो आपको नहीं याद आ रही है तो जेब हाथ में निकाल लो, मुरली लिखी हुई हाथ में, पॉइंट निकाल लो और उसको देखो, बाबा ने आज क्या, मीठे बच्चे क्या कहा, वरदान क्या कहा था, स्लोगन क्या था, प्रश्न क्या था आज का, मुरली में कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो आपने अंडरलाइन किए वो देखो कौन कौन से पॉइंट्स थे। तो एक पॉइंट ले लो पहले, फिर मनन के बाद चिंतन। चिंतन में क्या, चिंता लगाओ अपने साथ, एक चिंता तो थी खराब चीज की चिंता, चिंता लगाओ कि बाबा कहता बच्चे, बाबा तो कहते बच्चे तुम सदा स्मृति में रहो, स्मृति में फायदा है, विस्मृति में घाटा है, जैसे कल की मुरली थी। तो पर मेरे को तो विस्मृति हो जाती है, मैं तो सदा स्मृति में नहीं रहता हूं, तो मेरे को स्मृति सदा कैसे रहे, ये चिंतन लगाओ। मैं तो डॉक्टर हूं, मेरे को तो हॉस्पिटल जाना होता है, हॉस्पिटल पेशेंट देखने होते हैं, आईसीयू में पेशेंट देखने होते हैं, तो वहां मेरे को स्मृति कैसे रहे, पेशेंट देख रहा हूं, पेशेंट देखते देखते मुझे स्मृति कैसे रहे, बाबा की स्मृति, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, कैसे स्मृति रहे, एबीसीडी स्मृति में कैसे रहे। चिंता लगाओ, क्योंकि अचानक मेरी वहां मुझे हार्ट अटैक वहां आ जाए, शरीर छोड़ना पड़े तो क्या होगा, अंतमते सुगति हो जाएगी ना। तो आप खाना बना रहे हैं, जैसे माताएं खाना बनाती, कपड़े धो रही हैं, वो कपड़े धोते तो कैसे स्मृति रहे, मैं खाना खाता हूं, खाना खाते खाते भूल जाता हूं, स्वाद में चला जाता हूं, तो बाबा मैं तो स्वाद में चला जाता हूं, मैं तो भूल जाता हूं उसमें। तो ये अंदर से चिंता लगाओ कि उसमें भी मेरी स्मृति बनी रहे, क्योंकि स्मृति में फायदा है और विस्मृति में घाटा है। स्मृति में फायदा का मतलब क्या है, जैसे मैंने कल मुरली पढ़ी, चिंतन किया, फायदा का मतलब क्या है, घाटा का मतलब क्या है। फायदा माना आत्मा में सातो एनर्जी और बढ़ गई, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो गई है, और विस्मृति भूल गया तो क्या होगा, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ज्ञान भी कम हो रहा है, पवित्रता भी कम हो रही है, शांति भी कम हो रही है, रूहानी प्यार भी कम हो रहा है, खुशी भी कम हो रही है, आनंद भी की शक्ति भी कम होती जा रही है। और स्मृति में फायदा है माना चार्ज होती जा रही है बैटरी, आत्मा में ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद शक्तियों की रोशनी बढ़ती जा रही है, आत्मा जगती जा रही है, आत्मा रूपी दीपक जगता जा रहा है, उसका प्रकाश बढ़ता जा रहा है, स्वरूप बड़ा होता जा रहा है, आभामंडल बड़ा होता जा रहा है। तो ये चिंता लगाओ मेरा कैसे हो नहीं? तो ये हुआ चिंतन, ये थर्ड स्टेप हो गया। मतलब अपने जो भी आप काम करते हो, ऑफिस में करते हो, बिजनेस दुकान पे बैठते हो, घर में काम करते हो, कहीं भी आप काम करते हो, वहां पर ये स्थिति आपकी कैसी रहे, जो आज बाबा ने मुरली में कहा बच्चे ऐसे रहो। बाबा ने परसों मुरली में वरदान था ना, आपके 5 मिनट भी 5 साल से ज्यादा है, संगम का 5 मिनट भी 5 साल से ज्यादा है, एक एक सेकंड मेरी स्मृति रहे, एक एक सेकंड मैं उसमें उस स्वरूप में स्थित रहूं, उस स्थिति में स्थित होकर कार्य करूं, हर सेकंड हर संकल्प हर श्वास में वो मेरी याद बनी रहे। जैसे मुझे हर सेकंड हर संकल्प हर श्वास में याद है सतीश गुप्ता हूं, डॉक्टर हूं प्रोफेशन से, नहीं याद है, आप सबको याद है ना अपना, याद है कि नहीं याद है, सभी को अपना नाम सोते सोते आपसे पूछा आपका क्या नाम है तो क्या करोगे, उठ के बता सकते नहीं बता सकते, हर श्वास में याद है, हर संकल्प में याद है, हर सेकंड में याद है। ऐसे ही ये संकल्प हर सेकंड हर संकल्प हर श्वास में याद हो जाए कि मैं कौन हूं, मैं ये देह नहीं हूं, ये देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं, ये मेरा घर नहीं है, परमधाम मेरा घर है, ये जो मकान है जायदाद ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो सब यहीं रहने वाली है, मेरी असली प्रॉपर्टी तो दैवी गुण है, सत्यता है, सभ्यता है, पवित्रता है, निर्भयता है, अंतर्मुखता है, एकाग्रता, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी वैश्य, इकोनॉमी, एक रस स्थिति, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, सहनशीलता, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार, ये मेरा धन है, असली धन है जो मेरे साथ जाएगा। और ये धन मैं कैसे जमा करूं, जितना मैं बाबा को याद करूंगा उतना धन मेरे पास जमा होता जाएगा, ये धन मेरे साथ जाएगा। तो इस तरह से जब हम बार बार ये ध्यान, जैसे इस मैंने बता रहा हूं स्टेप बता रहा हूं कैसे, मनन चिंतन फिर मंथन, समझ नहीं आ रहा बाबा मैं क्या करूं, बाबा मैं कैसे करूं, मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, पिछले 20-30 साल से ज्ञान में चल रहा हूं, रोज मुरली सुनता हूं, रोज अमृत वेला करता हूं, रोज शाम को चार्ट लिखता हूं, तो भी मेरी गड़बड़ हो जाती है। बाबा कहता है बच्चे कम से कम 8 घंटे याद का चार्ट होना चाहिए, मैं तो बाबा मेरा तो 8 घंटा नहीं होता है, मेरा 2 ही घंटा होता है, मेरा तो सिर्फ 4 ही घंटा होता है। देखो 24 घंटे दिन में होते हैं ना, बाबा कहता 8 घंटे तुम सो जाओ, 4 घंटा मैं याद करता हूं तो 4 घंटा मेरा उसका असर रहता है, 4 घंटा याद का 4 घंटे पे असर रहता है, मेरे से विक्रम 4 घंटा 8 घंटा हो गया, पर 8 घंटा तो मुझसे विक्रम हुए, 8 घंटा मैं सो गया, तो 8 घंटा विक्रम हुए और 8 घंटा विक्रम नहीं हुए, क्या क्या रिजल्ट हुआ, टोटल रिजल्ट क्या हुआ, 0, जैसे कल था ऐसे आज हूं। तो अगर मैं कम से कम 8 घंटा याद करूं बाबा को, तो 8 घंटा याद से 8 घंटा मेरा क्या रहेगा, विक्रम नहीं होगा, 16 घंटा कवर हो गए, और सोऊंगा 8 घंटा बाबा की याद में तो 24.5 घंटे में विक्रम नहीं होंगे। तो इस तरह से बाबा ने कहा कम से कम अगर जब आपकी 8 घंटा याद होगी तो आपकी स्थिति पावरफुल होगी, तब विक्रम नहीं होंगे, तब तुम विक्रमाजीत बनोगे। अगर आपकी 4 घंटा याद है तो भी आप विक्रमाजीत नहीं बन सकते हो, 6 घंटा याद है तो भी विक्रमाजीत नहीं बन सकते हो। मैं इस पे बहुत चिंतन किया, मंथन किया, बाबा से पूछा कि बाबा आप बताओ इस पे 8 घंटा क्यों आप याद के लिए कहते हो, तो बाबा ने कहा कि बच्चे जितनी देर आप याद करते हो उतनी देर उसका असर आपकी बॉडी पर, आपके मन पर, मन बुद्धि पर रहता है। आठ घंटा याद किया तो आठ घंटा आपका असर रहेगा, उससे आठ घंटा आप 16 घंटे हो गए और 8 घंटा बाबा की याद में सो जाओ तो 24 घंटा आपसे विकर्म नहीं हुआ, विकर्माजीत हो गए। तो इस तरह से आप पुरुषार्थ करो। तो ये जो मनन चिंतन मंथन, मंथन मन बाबा से, हम फिर उस चिंता को बाबा के सामने रखते हैं, बाबा ये ऐसे मैं कैसे करूं, बाबा मैं कैसे करूं, और जब मनन करते करते मगन हो जाते हैं बाबा की याद में, जैसे आप बाबा के पास चले जाते हो, चिंतन करते करते बाबा के पास चले जाते, बुद्धि बाबा में लग जाती है, तो मंथन, फिर बाबा आपको मक्खन देता है, बच्चे आज मैंने ये मुरली, देखो मुरली का हर पॉइंट में तीन बातें हैं, मुरली का हर पॉइंट गुह्य है, गोपनीय है और रहस्य युक्त है, सिंपल नहीं है। बाबा की हर बात में क्या है, गुह्यता है, गोपनीयता है और रहस्य युक्त है। कोई आम आदमी व्यक्ति बाबा की मुरली पढ़े समझ नहीं आएगी उसको। जैसे हमने परसों की बाबा की मुरली, बाबा ने मुरली चलाई, कई लोग तो ये सोचते रहे बाबा बार बार वही लाइन रिपीट कर रहा है, दीपराज दीपक दीपकों से मिलन ना रहा है, दीपराज ऐसे कर रहा है, दीपराज बाबा वाह बच्चे वाह 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 वाह, किंतु बाबा की मुरली पढ़ो एक लाइन दूसरी लाइन से नहीं मिलती है, और एक एक लाइन का मतलब अलग है, एक एक महावाक्य का मतलब अलग है, अर्थ अलग है। मैं तो 5-6 बार पढ़ के देखा, हर बार मतलब, हर बार उसका गहराई समझ में आ रही है, ज्वाला क्या है, रोशनी क्या है, स्वरूप क्या है। मैं तुम बच्चों को देख सकता हूं, तुम्हारे स्वरूप को देख, तुम देख नहीं सकते हो, तुम बुद्धि के द्वारा जान सकते हो उसका क्या मतलब है, तो गहराई में उसका अर्थ चले जाओ। तो बाबा आपको बताएगा बच्चे तुम्हारा मतलब ये है, जैसे बाबा की एक दिन मुरली थी, तुम स्वीट बाप को, स्वीट बाप को, स्वीट बाबा क्या था कि स्वीट बच्चे था कि उसमें था, तुम स्वीट बाबा की याद में स्वीट क्या अपने स्वीट नहीं था, सच्चे बाबा के साथ सच्चे रहो, अभी पीछे था ना 5-6 दिन पहले मुरली में था, सच्चे बाबा के साथ सच्चे रहो और सच्चाई का चार्ट रखो। और ये तो हमने समझ लिया, ये मुरली पढ़ ली, मीठे बच्चे ये करो, कि तो फिर मैं जब मैंने वॉकिंग करते समय इसको गहराई में गया तो मैंने क्या सोचा, सच्चे बाप के साथ, सच्चा बाप का मतलब क्या है, सच्चा बाप माने परमात्मा। पहले हम किसको बाप समझते थे, भगवान किसको समझते थे, राम को भी भगवान समझते थे, कृष्ण को भी भगवान समझते थे, हनुमान को भी भगवान समझते थे, गणेश को भी भगवान समझते थे, वो सच्चा बाप नहीं था, सच्चा भगवान नहीं था, सच्चा बाप कौन है, परमात्मा कौन, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्तियों का सागर। और सच्चे रहने का मतलब, मेरे सच्चे तीन स्वरूप मेरे सच्चे हैं, एक तो अनादि स्वरूप परमधाम में, मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर पवित्रता, मास्टर शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्तियों का सागर, और दूसरा आदि देवता स्वरूप, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। और फिर लास्ट में जो है मेरा अनादि जो फरिश्ता स्वरूप, पुरानी दुनिया से न्यारा बाप की गोद का प्यारा, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप, वो मेरा सच्चा स्वरूप है। तो सच्चाई का चार्ट रखो, तो कितनी देर मैं स्थिति में रहता हूं इसका चार्ट रखो। तो ये सच्चाई का चार्ट, ऐसे तो सच का चार्ट क्या, सच का चार्ट रखें, तो मैं सारा दिन में आदि स्वरूप में कितनी देर रहा, आदि स्वरूप में रखे कितना काम किया, देवता बन के मैंने काम किया, ऑफिस में हॉस्पिटल में देवता, देवी बन के मैंने घर में खाना बनाया, देवी बन के मैंने सारा काम किया, इतना देवता जैसे बन के रहा, भले अभी साधारण स्वरूप है किंतु प्रैक्टिकल में मेरा स्वरूप कैसा रहा, फरिश्ता बन के मैंने काम किया, न्यारा प्यारा रहा। तो ये सच्चाई का चार्ट रखो। तो बाबा ने कहा बच्चे मेरा इसका मतलब कहने का अर्थ ये था कि तुम इतने आने अनादि आदि स्वरूप में कितनी देर स्थित रह करके कार्य करते हो घर ऑफिस में, तो ये मेरा कहने का अर्थ था। तो ऐसे मंथन करके जो पॉइंट निकले ना, ये मंथन से पॉइंट निकला, बाबा ने पॉइंट निकाला कि मक्खन निकाल के दिया, अब सिमरण करो इसको, सिमरण माना रटो नहीं, सिमरण का मतलब है कि इसको अपने कार्य में लगाओ, कार्य करते करते वो स्थिति में रहो, सिमरण का मतलब कार्य करते करते वो याद रहे, वो बात, वो मक्खन याद रहे, ये सिमरण हो गया। अब जब सिमरण, जब वो कार्य करते करते याद रही तो वो चीज हमारा संस्कार बन गई, संस्कार माना हमारी आदत बन गई, ये हमारी स्मृति स्वरूप हो गया। तो 6 स्टेप है मुरली सुनने के, पहला श्रवण, मनन, चिंतन, मंथन, फिर सिमरण और फिर स्मृति स्वरूप, और स्मृति स्वरूप ही योग की अवस्था है। तो ज्ञान मुरली ज्ञान है, और ज्ञान से फिर हमारी क्या बन गई, जब ये हमारे स्मृति में आ गई, हमारे यहां रिकॉर्ड हो गई, उसका संस्कार का रूप धारण कर ली, तो हमारे चेहरे पर वो चमक आ गई, यही योग की अवस्था है। और जब ये योग करते करते सातों एनर्जी हम खींचते जाएंगे बाबा से, ये जब सातों एनर्जी खींचते जाएंगे बाबा से, तो क्या होगा, ये कर्मों में हमारे सत्यता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, निर्भयता आ जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी, मधुरता आ जाएगी। ये जो सात एनर्जी है आत्मा के अंदर, ये सात एनर्जी ही क्या करती है, जब आत्मा भरपूर होती है सातों एनर्जी से, तो क्या होता है, हमारे जब हम व्यवहार में कार्य व्यवहार में आते हैं, तो वो दैवी गुणों के रूप में बाहर दिखाई देती है, सत्यता के रूप में, सभ्यता के रूप में, सरलता के रूप में, नम्रता के रूप में, मधुरता के रूप में, धैर्यता के रूप में, गंभीरता के रूप में, सहनशीलता के रूप में, दृढ़ता डिटर्मिनेशन के रूप में, संतुष्टता के रूप में, और हर्षित मुक्ता के रूप में दिखाई देती है। हम हर बात में आज्ञाकारी रहते हैं, वफादार रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, फरमानबरदार रहते हैं। तो ये जब हमारी स्थिति होती है, तो हम दैवी गुण हमारे कर्मों में दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से जब हम करेंगे, तो हमारी स्थिति दिन पे दिन, तो इस तरह से हमारे धारणा आती जाएगी, दैवी गुणों की धारणा आती जाएगी, और दैवी गुणों की धारणा आने पर क्या होगा, जहां भी हम जाएंगे, हमारा चेहरा हमारा मन, हमारी स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, वो चेहरे पे दिखाई देगी, और हमारे चलन माना कर्म, हमारे कर्मों में धैर्यता होगी, बोल में मधुरता होगी, चेहरे पे हर्षित मुक्ता होगी, है ना, और संतुष्टता होगी, तो उससे हमारा प्रत्यक्षता होगी, बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तो इससे सेवा होगी, और इस सेवा से सदा हम खुश रहेंगे। तो अभी जो समय आ गया है कि हमारा हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास, अपना तन मन धन मन वचन करण, हम अब बाबा की याद में लगा रहे, हमेशा लगा रहे। इसके लिए मैंने अपने ऊपर जो मैंने ध्यान दिया है, वो ये ध्यान दिया है कि जो बाबा की मुरली है, कम से कम दिन में 21 बार तो रिवाइज हो, कम से कम तीन या चार बार पूरी मुरली पढ़ी जाए, एक सुबह सुबह अमृत वेला योग करते ही, दूसरी बार मुरली सुनना, तीसरी बार वॉकिंग करते समय मुरली पढ़ना पूरी, एक एक पॉइंट पे मंथन करना ताकि वो स्मृति स्वरूप बन जाए, और फिर खाना खाने के पहले, लंच के पहले, डिनर के पहले और सोने के पहले, 5-6 बार तो ये हो गई। और जब भी मेरे को चांस मिले, बीच में कार में बैठे, हॉस्पिटल पहुंचे, बीच में पेशेंट के बीच में, आईसीयू के बाहर रास्ते में दूसरे वार्ड में जा रहे हैं, उसमें जेब से निकाली, एक पॉइंट पढ़ा, मन में चिंतन किया, फिर जेब में रख लिया, फिर उसको सोचते रहे, तो कम से कम 21 बार जरूर मुरली को रिवाइज करें, वो उसका मनन चिंतन मंथन सिमरन चलता रहे। तो ये मुरली ही हमारा इस समय ये हथियार है जिसके द्वारा हम आगे, वर्तमान समय हमें यही अटेंशन करने की आवश्यकता है। मैं अपने जीवन से देखता हूं कि मुरली ही हमारा साथी है, बाप के रूप में हमारा साथी है। और देखो ब्रह्मा बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा बने, क्योंकि बाबा ने जो कहा, ब्रह्मा बाबा ने तुरंत कर दिया, सेम डे कर दिया, देर नहीं की। और मम्मा का मम्मा क्यों बनी, क्योंकि मम्मा ने क्या किया, मुरली बाबा का कहना मम्मा का करना, कभी मम्मा ने कभी नहीं कहा कि बाबा ने, उसको कंटेस्ट नहीं किया कभी भी, उसी दिन करके दिखाया। हमारी दादियां क्यों बनी, दादियों को मुरली से बहुत प्यार है, सबसे पहले उनको मुरली चाहिए, उठते ही, रात को भी चाहिए, 5 बार 6 बार हर समय मुरली की बात करेंगे। दादी जानकी जी आती हैं, पूरी मुरली आपको सुना देती हैं, बैठ के मुरली का इतना गुहे आपको मंथन सुना देती हैं, उनका सारा दिन मनन चिंतन मंथन चलता रहता है, क्योंकि वो मुरली ही हमारा साधन है फरिश्ता बनने का। मुरली ही 100% जिससे मन और बुद्धि शुद्ध बनेगा, और मन और बुद्धि शुद्ध बनेगा तो बुद्धि में शांति धाम आ जाएगा, और मन में क्या आ जाएगा, सुख धाम आ जाएगा, फिर निर्भयता की शक्ति आ जाएगी, तो विनाश की आग को हम देख सकेंगे। ये वो आग हमको नहीं लगेगी जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे। अब ये मैं लास्ट में, 4 नियम और 4 मर्यादाएं सच्चे ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। सच्चा ब्राह्मण कौन, अब वो चाहिए, अभी तक हम सिर्फ कहते थे कि तो अब प्रैक्टिकल चाहिए। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, और वो भी पावरफुल अमृत वेला, 45 मिनट ना 45 मिनट सूक्ष्म वतन या परम धाम में रहे, युद्ध ना करे, युद्ध में समय नहीं बीत जाए, मैं आत्मा हूं परमात्मा की संतान हूं ऐसे फील करते करते 40 मिनट तो इसमें निकल गए, फिर मुश्किल से एक मिनट आधा मिनट बाबा के पास पहुंचे, फिर वापस आ गए। अगर आप दूध गर्म करना हो, स्टोव पे रखा उतार लो या गैस पे रखा उतार लो तो गर्म हो गया, कीटाणु मरे क्या? इससे विक्रम विनाश नहीं होते। कम से कम 10-15 मिनट तो हम परम धाम में रहें, 30 मिनट तो कम से कम सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में रहें, रूरियान करें बाबा से। अमृत वेला इनाम है। अगर सारा दिन मुझे ये अटेंशन रहता है, एबीसीडी का मनन चिंतन चलता रहता है, मंथन चलता रहता है, मुरली का, मैं बाबा की श्रीमत पे 100% चलता हूं, तो अमृत वेला मेरा अच्छा होता है। जो मैं सारा दिन में गलती करता हूं, मर्यादा के खिलाफ काम करता हूं, सुबह उठते ही अमृत वेला करे सबसे पहले वही संकल्प आता है, आपने भी देखा होगा, नहीं होता है? सबसे पहले वो गलत काम का ही अमृत वेला संकल्प आएगा। तो इसलिए अमृत वेला वही अच्छा कर सकता है जो सारा दिन बाबा की श्रीमत पर चलता है, हर कदम के लिए बाबा की श्रीमत मिली है, उठने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, हर चीज की श्रीमत मिली है। तो अमृत वेला पक्का बहुत अच्छा होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, ज्वालामुखी योग उसमें होना चाहिए, वही समय है विकर्म विनाश करने का। दूसरी बात, सच्चा बच्चा वो ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी मुरली मिस ना करे। मुरली कहां पर? इंटरनेट पे नहीं, मुरली पढ़ के नहीं। कई लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे मुरली पढ़ लेते हैं, पीस ऑफ माइंड फिट मुरली देख लेते हैं, वो मुरली नहीं। मुरली क्लास में आके मुरली सुने। अगर आपको आपको भूख लगी है, मैं आपको एक एक थाली दिखा दूं, फोटो दिखा दूं, तो आपका पेट भर जाएगा क्या? भरेगा? उसमें फल भी है, सब्जी भी है, चावल भी है, रोटी भी है, या डोसा भी है, चटनी भी है थाली के अंदर, फोटो में, पेट भरेगा आपका? भरेगा क्या? तो खाली मुरली ऐसे देख लेना टीवी में या इंटरनेट पर देखना, वो ऐसा ही है। जब कोई ब्राह्मणी या टीचर, कोई भी टीचर हो, वो आपको मुरली सुनाती है या सुनाता है कोई भाई, तो बाबा उसके द्वारा मुरली सुनाते समय आपको शक्ति भी देता है, और वो सेंटर का वातावरण आपके अंदर वो शक्ति भरता है जिसमें वो रिकॉर्ड होती है, नहीं तो मुरली रिकॉर्ड नहीं होती है। आपने देखा होगा मुरली पढ़ते हो याद भी नहीं रहता मुरली में क्या था, थोड़ी देर बाद देखो मुरली याद भी नहीं होती है, तो फायदा क्या है ऐसे मुरली सुनने का? कोई फायदा नहीं होता। तो याद रहे कि मुरली ऐसे पढ़ना ऐसा ही है जैसे कि खाना, आपको भूख लगी और फोटो देख लो खाने की, पेट भरेगा? नहीं भरेगा। तो मुरली आकर के सुनना, क्लास में बैठ के सुनना, उस वायुमंडल में आके सुनना, उससे आपको शक्ति मिलेगी। तो कभी क्लास में मुरली, इसलिए बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, बच्चे जो इस अमृत वेला वाली मुरली, माना 6 बजे 7 बजे वाली मुरली में, जितने घंटे यहां मुरली में लेट होता है उतने घंटे, उतने जन्म वहां सत्युग में लेट हो जाता है, जितने घंटे यहां लेट उतने घंटे, उतने जन्म सत्युग में लेट। अगर 2 घंटा माना 9 बजे 10 बजे आए आप तो क्या होगा, 3 घंटे लेट हो गए ना, तो अगले 3 जन्म सत्युग के मिस हो जाएंगे, 81 जन्म मिलेंगे सिर्फ टोटल, है ना, 84 नहीं मिलेंगे, श्री कृष्ण का पाठ मिस हो जाएगा, नहीं होगा। इससे कभी हम मुरली मिस ना करो, क्लास में आके मुरली सुनो, जितना भी कुछ हो क्लास में आके मुरली। अगर बाबा को हम प्रायोरिटी देंगे तो बाबा भी हमें प्रायोरिटी देगा। नियम बना लो कि हमें मुरली सुनने से पहले कुछ नहीं खाना है। मैंने बहुत सालों से नियम बनाया ये वाला कि मुरली सुनने के बाद ही खाना है, पानी उसके पहले पीते हैं, किंतु मुरली खाना कुछ चीज अंदर एनर्जी जाना ही उसके मुरली सुनने के बाद, पहले आत्मा का भोजन, मुरली आत्मा का भोजन है, और फिर आत्मा को भोजन मिल गया उसके बाद शरीर को भोजन देना है, कुछ भी देना है। अमृत वेला आत्मा का स्नान है, स्नान लिया उसके बाद मुरली शुरू, 8 बजे तक, 4 से 8 बाबा और बाबा की याद, बाबा की मुरली के अलावा कुछ भी मन में नहीं आना चाहिए। तो 4 घंटे हमारा याद का चार्ज सुबह से लेकर 4 से लेकर 8 बजे तक हो सकता है, 4 बजे तक मुख से बोलो नहीं जहां तक हो सके, टेलीविजन मोबाइल इंटरनेट कुछ भी ऐसा मत उठाओ, अपना रिकॉर्ड बना लो कि 4 घंटे में बाबा की याद में ही रहना, तो पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली, तीसरा फिर सारा दिन अटेंशन रखो बाबा ने आज क्या कहा, मुझे बाबा ने क्या जो होमवर्क दिया वो मुझे क्या करना है। मुरली में सारा दिन मुरली का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण, स्मृति स्वरूप बनते रहो, हर कार्य करते करते, हर सेकंड, हर श्वास, ये तीसरा नियम है बाबा का, सच्चे ब्राह्मण का नियम है। चौथा सोने के पहले अपना पोता मेल, अपना जो भी हिसाब किताब, आज सुबह सारे दिन में क्या गलतियां हुई, लेटर लिखो बाबा को, बाबा सुबह मुझसे गलती हो गई, बाबा मैंने आज उसमें ऐसा हो गया, बाबा इसमें ऐसा हो गया, बाबा उसमें उसने गुस्सा किया ना तो मेरे को भी थोड़ा सा अंदर से गर्म हो गया, है ना। तो जो भी जैसा भी हो वो लिखो, है ना, और फिर लिख के साइन कर दो, साइन करके बाबा को दो, फिर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। बाबा का हॉट फैक्स नंबर है, हॉटलाइन, हॉटलाइन फैक्स नंबर है, हॉटलाइन फोन नंबर भी है। कौन सा है, कौन सा है? दुनिया में हमें 10 डायल करें तो स्टेट के बाहर जाते हैं, 2-0 डायल करें तो कंट्री के बाहर, और 3-0 डायल करें तो विश्व के बाहर। तो मैं आत्मा बिंदु या जीरो, मेरा बाप भी बिंदु या जीरो, और जो आज सारे दिन में बीत गया मल्टीप्लाइड बाय जीरो, वो भी जीरो हो गया, तो हमारा लेटर बाबा के पास पहुंच जाता है। पहले लेटर लिखो, फिर चार्ट भरो, याद का चार्ट भरो, कितने घंटे आज याद हुई। हम क्या करते हैं, हम घंटे घंटे सोल कॉन्शियसनेस का चार्ज करते हैं, मैं कितने घंटे, एक घंटे 60 मिनट में कितने मिनट सोल कॉन्शियस रहा, आत्मिक स्थिति का अनुभूति रही कि मैं आत्मा हूं, आत्मा शरीर को चला रही हूं, आत्मा हाथों से काम कर रही हूं, आत्मा हार्ट को चला रही हूं, परमात्मा की, मैं परमात्मा का बच्चा हूं। तो ऐसी स्थिति में रहकर एक एक घंटे का चार्ट रखू सुबह 4 से 10 तक। तो ये जो है सोने के पहले चार्ट बाबा को दो। फिर चौथी बात है, फिर इसके बाद ये चौथी बात मैं कर रहा हूं, फिर मुरली पढ़ो 9:30 बजे, ये काम हमको करना चाहिए, और फिर बाबा को याद करके बाबा की गोद में सो जाओ। ये जो हमारा बेड है ना, बेड हमारी गैरेज है, कार है ना, बॉडी हमारी कार है, कार को गैरेज में पार्क कर दो, और हमारा बेडरूम कहां है, सूक्ष्म वतन, और हमारा बेड कौन सा है, बाबा की गोद। कभी गैरेज में नहीं सो जाओ, अधिकतर लोग गैरेज में सो जाते हैं, गैरेज में फिर मक्खी वो क्या होते हैं, मच्छर होते हैं, मक्खी होती है, हवा नहीं होती है ना, नींद नहीं आती है। तो ये अभ्यास करो, और फिर ये चार नियम, अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन रखना, और सोने के पहले अपना पोता मेल, चार्ट, और बाबा की गोद में सोना। फिर चार मर्यादाएं हैं, मतलब चार परहेज हैं, ये चार गोली हो गई, ये चार परहेज। पहला परहेज है पवित्रता। पवित्रता खाली ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य तो बहुत फूल बात है, सूक्ष्म बड़ी बात नहीं, किंतु हमारा ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करती है, इसने ऐसा क्यों किया, बाबा का बच्चा होकर भी ऐसे करते हैं क्या, ये भी अपवित्रता है। क्या, क्यों, कैसे करना, ये भी अपवित्रता है। तो ऐसी पवित्रता माना जो हो रहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, इस तरह की पवित्रता हमको चाहिए। ऐसी आत्मा का ही योग बाबा से लगेगा, तो जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी उतना बाबा से योग लगता जाएगा। आज पवित्रता को खराब करने वाली चीजें बहुत सारी हैं, टेलीविजन, मोबाइल और इंटरनेट, मैंने बताया ना, आदमी इसमें फंसे हुए हैं सभी, इससे बचो। तो ये जो इससे बचो, सिर्फ मुरली ही हमारा सूक्ष्म, जितना मुरली पढ़ते जाओ उतना अच्छा पवित्रता बढ़ती जाएगी। तो दूसरी बात है शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन माना बाबा की याद में भोजन बनाओ, बाबा की याद में खाओ। सात्विक माना फल, सब्जियां, रोटी, दाल, सलाद, दूध, ये है सात्विक भोजन। रास्तिक भोजन माना पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयां, है ना, ये रास्तिक माना, इससे आलस पैदा होता है, खाओगे आलस आएगा, नींद ज्यादा आएगी। तो रास्तिक भोजन खाओ, और फिर कहीं योग लगे, योग लगेगा नहीं। फिर तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी, कोको कोला, पेप्सी, ये जो आता है कोल्ड ड्रिंक्स, ये ब्राह्मणों का लिए तामसिक, वो बाजार के बिस्किट, बाजार के जैम्स, बाजार की चीजें जो आती है ना पैक्ड, पिज्जा, बर्गर, है ना, ये सब जो बहुत टेस्ट देती है मुंह को, है ना, ये सब के सब तामसिक हैं, उत्तेजना पैदा करती है, स्वाद को बहुत जगाती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ये तामसिक है, इससे उत्तेजना पैदा होती है, राइट। तो बाबा का अगर हमें योग करना है तो हमारा भोजन सिंपल, भोजन आसक्ति में आके मत खाओ, बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ। जैसे पति पत्नी शुरू शुरू में शादी होती है ना, तो कैसे खाते हैं? पत्नी पति को खिलाती है, पति पत्नी को खिलाता है। तो आप अपनी थाली लेके कहां चले जाओ? सूक्ष्म वतन में चले जाओ, ठीक है? बाबा आपको खिलाए, बाबा को आप खिलाओ। इस स्थिति में भोजन खाओ तो शक्ति मिलेगी, ठीक है? तीसरी बात सत्संग। सत्संग माने सिर्फ बाबा और मुरली का संग, तीसरा और कुछ संग नहीं करो। ये मैगजीन पढ़ूं, ये किताब पढ़ूं, वो किताब पढ़ूं, उसकी बहुत अच्छी किताब है, नहीं। मुरली 100% पॉजिटिव टीम है, सत्य है, बाबा सत्य है। तो बाबा का संग करो और मुरली का संग करो, उससे हमारा जीवन शुद्ध बनता जाएगा। मुरली को हमेशा साथ रखो, चार्ट हमेशा अपने जेब में रखो, मुरली और चार्ट अपने जेब में रहना चाहिए हमेशा दिन रात। तो तीसरी बात यह हो सत्संग। चौथा दैवी गुणों की धारणा। तो दैवी गुणों की धारणा माना जो दैवी गुण है, सत्यता, सभ्यता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, ये रखो, संतुष्टता, सहनशीलता। क्रोध आवे मत करो, क्रोध मुख को सिल लो, क्योंकि एक बार क्रोध किया 3 दिन तक आपका योग नहीं लगेगा, मुरली अंदर जाएगी नहीं। फिर एक बार उदास हो गए 5 दिन तक योग नहीं लगेगा। और एक बार किसके प्रति अपने अंदर बदलने की भावना रख ली, जब तक उसको माफ नहीं करोगे तब तक आपको आपका योग लगेगा नहीं। इसलिए जिसने जो भी किया, जिससे जाने अनजाने कुछ भी हो गया, उसको माफ कर दो। आपसे भी कोई गलत काम हो गया, आप अपने आप को माफ कर दो। ड्रामा में रील रिपट गई, 5 साल के बाद आएगी, उसको ज्यादा विस्तार में मत लेके जाओ। बीती बातों को फुल स्टॉप लगा दो, सबको माफ कर दो, अपने आप को माफ कर दो। तो दैवी गुणों की धारणा। तो जितना आपके हमारे अंदर पवित्रता बढ़ती जाएगी, जितना हम शुद्ध सात्विक भोजन लेते जाएंगे, जितना अधिक हम सत्संग में रहेंगे, जितना अधिक दैवी गुणों की धारणा करते जाएंगे, उतना अधिक हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा, उतना अधिक मुरली हमारे अंदर रिकॉर्ड होगी, उतना अधिक हमारा क्या होगा, अटेंशन सारा दिन रहेगी, और उतना अधिक हम सच्चाई से बाबा को चार्ज दे सके। चलते फिरते बाबा का हाथ और साथ हमारे सिर पर रहेगा। तो अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है, इस ये वर्तमान समय का पुरुषार्थ हो तो हमारा अमृत वेला ज्वालामुखी योग हो जाएगा, हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, हम विक्रमाजीत बन जाएंगे। विक्रमाजीत बनेंगे तो कर्मातीत बनेंगे, 63 जन्मों के विक्रम विनाश होने के बाद हम विक्रमाजीत बनेंगे, फिर कर्मातीत बनेंगे तो रिटर्न जर्नी पे जो 21 जन्म है वो कर्मातीत स्थिति के बीतेंगे, अर्थात उस समय हम कर्मातीत होके अपनी एनर्जी को बैटरी चार्ज होती जाएगी, और फिर हम संपूर्ण अवेक्ट फरिश्ता बन जाएंगे, फिर हम मंत्र सेवा कर पाएंगे, अर्थात हमसे देवताओं के हमारे चेहरे से दूर बैठे भी, यहां से 10,000 किलोमीटर दूर बैठे भी देवताओं लोगों को हमारे साक्षात्कार होंगे, और उनके द्वारा उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, उनकी कष्ट दूर हो जाएंगे, और उनको समझेंगे, ऐसा फील होगा सबको कि बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। तो इस समय इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और चारों प्रकार की आग जो है, जो चारों प्रकार की आग बताई ना, विनाश की आग, विकारों की आग, देह देह के संबंध और पदार्थों के लगाव की आग, और पश्चाताप की आग, चारों प्रकार की जो आग विश्व में लगने वाली है और लग गई है कुछ, तो उसमें हम उन आत्माओं को, जो आत्माएं इसमें करोड़ों आत्माएं जो प्यासी होंगी, जो जल रही होंगी, वो उनको हम सकाश दे सकेंगे, उनको हम शीतलता प्रदान कर सकेंगे। और किंतु ये चेक कर लें कि अभी हमें चेक करें कि हमारे अंदर जरा भी इन चारों आगों में से कुछ ना हो, ना तो विनाश की आग का डर हमारे अंदर हो, ना तो विकार की कोई अंश भी हमारे अंदर हो, ना तो हमारे अंदर कोई देह के संबंध, देह के पदार्थ में कोई लगाव की सूक्ष्म भी कहीं अटैचमेंट हो, वो निकाल दें। और चौथा, पश्चाताप की आग जरा भी ना हो, हर संबंध की प्राप्ति, हर प्राप्ति बाबा से अभी कर लें, हर प्राप्ति का अनुभव बाबा से, हर संबंध का अनुभव बाबा से अभी करते जाएं, तो क्या होगा, हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, हम वारिस बन जाएंगे। वारिस की डेफिनेशन बाबा ने बताई थी, वारिस माना जिसका हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास, मन वचन कर्म, तन मन धन बाबा और बाबा की सेवा में लगा रहे, और जिसके अंदर बेहद का सकाश देने की समर्थ हो, ये वारिस क्वालिटी की आत्मा निशानी थी। तब हम वारिस क्वालिटी की आत्मा बन सकेंगे, तभी हम 108 की माला में आ सकेंगे। और तभी हम बाबा का नाम वाला कर सकेंगे। ओम शांति।
कहता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए।